आयत देखिए 176, कस्सब असहाब उलैकतिल मुरसलीन, और इसी तरह साहब एका ने भी झुटलाया रसूलों को। ठीक है, बदवास एका क्यों आई है? जंगल वाले, बंद में रहने वाले, कौम शुएब का एक दूसरा नाम कह लीजिए, या हज़रत शुएब एक दूसरी कौम की तरफ भेजे गए थे, वही कौम है। और सूरह हिजर की आयत नंबर 78 में भी इसका जिक्र हुआ। क्या पैगाम था? इस क़ाल लहुम शुएबुन अला तत्तकून, जब कहा इनसे शुएब ने, क्या तुम डरते नहीं हो? सेम मैसेज, तकवा। यहाँ आपको माली मामलात का बिगाड़ दिखेगा, पिछली कौमों में कहीं नमूदा नुमाइश का बिगाड़ था, तो हर तरह के बिगाड़ से बचने का एक ही ज़रिया है, तकवा। आप देखिए कि जब तकवा होगा ना, तो इंसान ये नहीं हो सकता कि इबादात में तो बहुत पुख्ता हो जाए और उसके बाद बाकी चीज़ों में पीछे हो जाए, ये नहीं होगा। माली मामलात में उसका बिगाड़ इतना हद से बड़ा हो और वैसे मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ता फिर, ये नहीं होता। मोमिन एक बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटी के जो मुख्तलिफ पज़ल से मिलकर जमनता है और फिर उनके साथ उसकी शख्सियत में खूबसूरत रंग आता है। चूँकि तकवा नहीं था तो माली बिगाड़ की तरफ आ गए। तो कहनी लकुम रसूल नमीन, मैं यकीनन तुम्हारे पास एक अमानतदार रसूल हूँ, फत्तकुल्लाह वतीउन। ऊपर भी तकवा, यहाँ फिर तकवा, यहाँ तरतीब के लिए सबसे पहली चीज़ जो अपने अंदर लानी है वो अल्लाह का तकवा है, फिर वतीउनी, फिर रसूल की इताअत। आज हम सब भी अपने ऊपर इसको गौर से देख सकते हैं। किसी को आप दीन की तबलीग करते हैं और आप उसमें हर कमी देखते हैं, तो सबसे पहले उसको क्या कहें? तकवा, अल्लाह का खौफ आ जाए, फिर सेकंड लेवल पर रसूल की इताअत। वमा सअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं तुमसे इस पर किसी उजरत का तालब नहीं हूँ, नहीं है मेरी उजरत मगर तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे। देखिए बार बार हर नबी के साथ बात है, और आप में से किसी का यहाँ सवाल भी लिखा हुआ है कि नबियों ने कहा कि हम तुमसे तबलीग की उजरत नहीं मांगते, तो क्या दीन की तालीम से मुंसलिक लोगों को तनख्वाह वगैरह नहीं दी जा सकती? देखिए पहला तो जवाब इनके सवाल के अंदर है, दीन की तबलीग और चीज़ है और दीन की तालीम और चीज़ है। तबलीग होती है कि जो एक इंसान अपना मिशन और अपना फ़र्ज़ समझ के करता है। रह गई तालीम, मसलन कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं, जहाँ भी कोई फुल टाइम दीन सिखाने पे लगा हुआ है, ऑफकोर्स उसको अब देंगे, लेकिन देने वाले ये सोचें कि हम इसका हक दे ही नहीं सके, और लेने वाला ये सोचे कि मैंने ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है, और दूसरी बात है कि ये मैं पढ़ाने का नहीं ले रहा, मैं इसके एक्स्ट्रा कामों का ले रहा हूँ। और यकीन करें, जैसे पीछे भी हमने बात की कि किसी को दीन सिखाना इतनी बड़ी जॉब है कि इसकी पे कोई दे नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या देगा? टीचर ने लेसन प्लान बना दिया था, ये सारी पे जो है ये लेसन प्लान बनाने की, टीचर ने कोई प्लानिंग कर दी थी। देखिए ना, तालीम के अंदर सिर्फ पढ़ना नहीं होता, कई और चीज़ें मैनेजमेंट बाज़ दफ़ा टीचर्स को साथ देखनी होती है, तो बहुत ही मुख्तात के ज़रिए से वो ये कह सकते हैं कि जी ये तो बस हम मिसाल लेती मस्जिद की। अब मस्जिद में एक इमाम साहब हैं, पांच वक्त नमाज पढ़ाते हैं, अजान देते हैं, ठीक है, इसी तरह मस्जिद के अंदर वो ऑफिस में एक घंटा बैठते हैं। आप उन इमाम साहब को 2000 पाउंड फी तनख्वाह के तौर पर कहें, तनख्वाह तो बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन बोलते हैं, कोई बात नहीं। आप ये सोचें कि ना तो ये इनकी पाँच वक्त की अजान की, ना पांच वक्त की नमाज़ की है, ये सिर्फ वो जो एक घंटा मस्जिद के ऑफिस में बैठ के कोई मैटर्स इशू करते हैं, ये सारी तनख्वाह उसकी और ये भी थोड़ी है। मेरा ले बात समझ आ गई है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको शुरू में जहाँ देखा था, वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, उस पर इसमें हमने डिटेल से बात की थी, अगर आप सुनना चाहें तो वहाँ पीछे जाके दोबारा सुन सकते हैं। फिर उसके बाद औफुल कलीला, अब देखिए पैमानों को पूरा करो। तनकीद यहाँ लिख लीजिए, इस नबी ने अपनी कौम के माली मामलात पर तनकीद की, और ये तनकीद लोगों को सबसे बुरी लगती है। लोगों को आपके नमाज़ें पढ़ो कहते हैं जी बहुत अच्छी बात है मौलवी साहब, कितनी अच्छी बातें करते हैं, नमाज़ पढ़ो पढ़नी चाहिए, रोज़े रखा करो बड़ी अच्छी बात है। जहाँ मौलवी साहब कहेंगे ये ज़रा मुझे कुतर के आओ, तो मौलवी साहब थोड़े से बुरे लगेंगे। फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे कुछ दिन बाद चलो भाई दाढ़ी भी रखो, और बुरे लगेंगे। ये सिगरेट क्यों पीते हो इसको छोड़ो, और बुरे लगेंगे। और जैसे मौलवी साहब आपसे पूछ लें कि बताओ कमाई क्या है, तो आप कोई नाम ले ऐसा, तो मौलवी के तौबा करो, ये तो जायज़ ही नहीं। बस उस दिन तो दिल करेगा कि उन मौलवी साहब को बिल्कुल ही वहाँ से किक आउट कर दें। लोगों को नेकियों का हुक्म दें, लोग बुरा नहीं मानते। लोगों को उनकी बुराइयों पर टोके तो लोग बहुत बुरा मानते हैं। और 10 नेकियाँ करना कराना आसान, और एक गुना और एक नाफरमानी छुड़ाना मुश्किल। हज़रत शुएब ने कहा वला तकूनु मिनल मुख्सिरीन, और देखो खसारा पहुँचाने वालों में मत हो जाओ। अब देखिए मुख्सिरीन है ना, सीन की ज़ेर है, تجوید میں اگر آپ اس کو جلدی میں پڑھ جاتے من المخسرین، اور جلدی میں پڑھا مخسرین ہی جاتا ہے، تو معنی بالکل اپوزٹ ہے. مخسر، مخسر سے مخسرین جمع ہو گئی، نقصان پہنچانے والا. اور اگر آپ کر دیں من المخسر یا مخسرین، جس کو نقصان پہنچایا گیا، فاعل اور مفعول کا فرق ہے. تو لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور سے پڑھا کریں کہ کہیں غلطی نہ لگے. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو. سیم بات ہوئی، پیچھے بھی بات ہو گئی، اس پہ پوری صورت ہے. ویل للمطففین، تیسرے پارے میں، یعنی لوگوں کے حق میں کمی کرنا اللہ کو اتنا برا لگتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں اللہ کے معاملے میں آنا پائی برابر رکھتے ہیں، نماز چھوٹ جائے پوری پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے، سنتیں بھی ادا کریں گے، لیکن لوگوں کے معاملے میں کیئر لیس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. تو ان آیتوں سے یہ ذہن میں بات آنی چاہیے کہ لوگوں کے حق کو نہیں مارنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. کون؟ اللہ کی ذات. وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور پہلی مخلوق کو بھی. لفظ جبلہ آپ کے سامنے پہلی دفعہ آیا ہے، جیم با لام اس کا روٹ ہوتا ہے. جبل کی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں. جبل کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ. پہاڑ کتنا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے نا. تو بڑے سے جبل تھا، تو جیم کی زیر جب جبل آ گئی، تو جبلتن اور جبلن کہتے ہیں مخلوق کو، بڑی مخلوق، گہترین، بہت بڑی. یہی لفظ سورہ یاسین آیت 62 میں بھی آتا ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر دیا. تو بڑی جماعت کے لیے لفظ جبلت آتا ہے. وَهُوَ الْجَمْعُ ذُو الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مِنَ النَّاسِ، تو گویا کہ بہت بڑی مخلوق کے معنوں میں، کہ اللہ نے دیکھو تم سے پہلے بھی تو اتنی چیزوں کو بنایا، اتنا کچھ بنایا، کیا تمہیں نہیں بنا سکتا. اشارہ دلایا گیا کہ یا کنا بدو، تم چھوٹے ہو اور وہ بڑا ہے. بعض دفعہ جب انسان دنیاوی عروج پہ پہنچتا ہے، جیسے کہ یہ قوم تھی، ترقی یافتہ تھی، سپر پاور تھی، اپنے آپ کو بہت دولت مند سمجھتے تھے، تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی ہو تو سامنے آئے، ہم تو یہ کر سکتے، ہم تو وہ کر سکتے. تو ایسے لوگوں کے دماغ سے یہ ہوا نکالنے کے لیے کہ تم سب کچھ نہیں ہو، اصل طاقت اللہ کی ہے، اور تم تو اس کا اشرے شیر بھی نہیں ہو جو لوگ تم سے پہلے پیدا کیے گئے. اور آپ اگر اس کو ریئلٹی پہ بھی لے کے دیکھیں، تو پہلے دور کے لوگوں کے قد کاٹ بھی لمبے تھے، جسم بھی مضبوط تھے، چوڑے چکلے تھے، عمریں بھی لمبی تھیں، ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں. دن بدن آپ دیکھیے قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی آتی ہے. پھر اسی طرح جسمانی کمزوری ہے، یہ لگ پاتا ہے کہ اس کی وجہ ہمارا لائف سٹائل ہے، محنت چلی گئی، کھانا پینا خراب ہو گیا، لگژریس ہو گیا، عیش کوش ہو گئے، جس کی وجہ سے پھر ہر وقت ہی پریشان رہتے ہیں اور بیمار رہتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے یہ جو بات کہی گئی کہ دیکھو تم کس کھیت کی مولی ہو، ہم نے تو تم سے پہلے بڑے بڑوں کو مار دیا، تم تو دنیا میں اب آئے ہو، تم سے پہلے تو جبلہ، بڑی بڑی قوتیں آئیں اور دنیا سے چلی گئیں، تو لہٰذا تم اپنی فکر کر لو. اگر یہ بات سامنے رکھ لیں تو ہم اپنے اوپر لے کے سوچیں، یہ تو قوم شعیب تھی، آج ہم تو اس کے کتنے سو سال بعد ہیں. آج کے انسانوں کو مارنا کیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کو مسلنے سے بڑا نہیں ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے. لیکن لوگ ایسی باتوں کو سن کر پھر اوفینڈیڈ ہوتے ہیں، لوگ ایسی باتوں کو سننے کے بعد پھر اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. قالو انما انت من المسحرین، پس تو ایک سحر زدہ شخص ہے، جادو ہو گیا، تم پہ اثر ہو گیا، ہپناٹائز تم ہو گئے، کریزی تم ہو گئے، تمہیں تو ہوش ہی نہیں، ہر وقت یہ حرام یہ غلط وہ، بس نصیحتیں کرتے رہتے ہو. اور دوسری بات ہے، وہ مانتا الا بشر و مثلنا، اور نہیں ہے تم مگر ہماری جیسے ایک انسان، ہم تو اپنے تمہارے اندر کوئی خاص بات دیکھتے نہیں کہ جو تمہارے اندر ہو اور ہمارے اندر نہ ہو. وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، تیسرا الزام، بلکہ ہمارا تو گمان غالب ہے کہ تم جھوٹے ہو. کتنی ڈٹائی ہے، کیسی یہ قومیں تھیں، اور نبیوں کا صبر دیکھے کتنا ہوگا. اپنا بچہ آج اگر یہ بات کہے تو ماں اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے کو تیار ہو. کہاں وہ قومیں جن کے ساتھ بے لوس کے مغز مارے. اور اگر انسانوں سے بدلے مانگنے ہو تو انسان کبھی ان باتوں کو سننے کے بعد ان کے منہ نہ لگے. لیکن نبی چونکہ اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے تھے، ان باتوں کو سن کر بھی نہیں نکلتے. پیچھے یاد کیجیے حضرت یونس کو، اللہ کے حکم سے بغیر پہلے ہی چلے گئے. تو پتہ نہیں ان کی قوم نے ان کو کتنی کو دل پھاڑنے والی بات کہی تھی کہ کاچا میں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کے. اللہ کو یہ بھی نہیں اچھا لگا، تم نہیں چھوڑ سکتے جب تک میں نہ کہوں کہ چھوڑنا. یہ نبیوں کی ایک آزمائش ہوتی تھی. जैसे आप देखिए आज के दौर में अगर एक औरत अपने घर में तंग है, अल्लाह ने इजाज़त दी है, कोशिश करके देख ले, नहीं तो चली जाए, अलग हो जाए, तलाक ले ले, कुछ भी कर ले। एक औरत है उसको पता है हालात भी ख़राब है, मार पिटाई भी है और सब कुछ है, और उसके बाद रहना भी इधर है, तो मुश्किल लगता है ना। तो वो कितने को लोग होंगे उस घर में, चार छः। नबियों पे तो पूरी की पूरी कौम ऐसे पड़ती थी जैसे भेड़ों का छज्जा, लेकिन अल्लाह कहते हैं अभी नहीं जा सकते। और कौम को इतना यकीन था हजरत शुएब के झूठे होने का कि फर्स्ट के तले ही ना किसफ मिनस समाई, बस गिरा दो हम पर आसमान का एक टुकड़ा, इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये जुमला कौन बोलेगा जिसको यकीन है कि मेरा मुखातिब झूठा है। लेकिन आप में से कोई इतना बेवकूफ़ है कोई कि अच्छा अगर आप सच्ची हैं ना तो या दुआ करेंगे ये छत गिरे और मेरे ऊपर पड़े, तो आप मुझे तभी कहेंगे जब आपको यकीन होगा कि मैं सच्ची नहीं और इनके कहने पे नहीं छत फटती। अगर आपको एक लम्हे के लिए यकीन आ जाए ना कि अगर ये कहेंगी कि छत गिर जाए तो वाकई छत गिर जाएगी, या कोई पीछे खड़ा है और इशारा मेरा सुनते ही फ़ौरन वो उसको गिरा देगा, तो आप कभी ये बात नहीं कहेंगी। यहाँ से एक बात नोट कीजिए, बुरे से बुरा इंसान, गलत से गलत काम करने वाला इंसान भी खुद को सच्चा समझ रहा होता है, तभी तो वो गलत काम करता है, करके दिखाओ। और असल में पीछे मुसीबत वही थी कि ये वही और रिसालत का दावा ये झूठा है। तुम कैसे हम जैसे इंसान होकर ऐसी ज़िंदगी बसर कर सकते हो? याद है आपको 8वें पारे के और 9वें पारे के शुरू और आखिर के बीच में कैसे कहते थे शुएब, तू तो अजीब ही बातें करता है, आज के दौर में ज़रा ऐसा जी के तो दिखा, ये तो बस तेरी बातें। वहाँ भी इन्होंने बड़ी मुँह मारी की थी जो अल्लाह ताला ने पेश कर दी, कहा अच्छा ठीक है तुम जो कहते हो मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल قال ربي يعلم بما تعملون, उन्होंने जवाब दिया मेरा रब खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। इसको कहते हैं नबियों का अखलाक, कोई रद्द अमल नहीं, कोई कमेंट नहीं, बस जो तुम कह रहे हो मेरी दावत पर तुम्हारा एक एक रद्द अमल, तुम्हारा तर्ज अमल, तुम्हारे तमाम करतूत मेरा रब उसको देख रहा है। सच्ची बात है, ये बात सुन के रंग पीला हो जाता है लोगों का कि भई आपको मैंने क्या जवाब देना है, मेरा रब देख रहा है वो आपको जवाब देगा। फ़कत ज़बू फ़ख़ु मज़ा योम ज़ुल्ला, तो उन्होंने उसको छुटला दिया तो इन्हें आप पकड़ा साइबान वाले दिन के अजाब ने। फ़कत ज़बू, ऐसे लगता है कि इस कौम पर पहले ऊपर से कोई अजाब आया था और इन पर साइबान की तरह छा गया था और फिर उसके बाद इनके ऊपर बरसा था। इसकी तफसील मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ अभी। इन्नहु काना अज़ाब यौम नज़ीम, यकीनन वो एक बहुत बड़े दिन का अजाब था। बड़ा दिन क्या मतलब, 24 घंटे से लंबा दिन था? नहीं, अजाब की तो एक घड़ी बड़ी लंबी होती है, एक घंटा लंबा है, यानी अजाब की शिद्दत की वजह से वो दिन लंबा लगा। इन नफ़ी ज़ालिक लायतन, बेशक इसमें एक निशानी है। वमा कान अक्सर हम मुमिनीन, लेकिन इनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, और यकीनन आपका रब बहुत ज़बरदस्त रहम करने वाला है। यानी अल्लाह की रहमत क्या है कि नेक लोग थोड़े भी हों उनको भी बचा लेता है। ये नहीं कहता कि अच्छा आप सारे मर रहे हैं इनको भी मार दो, और यहाँ मक्का वालों को मोहलत दी जा रही है इसकी तरफ भी इशारा है, और तुम्हारा ये जो मौजज़ा मांगना इसके ऊपर मौजज़ा नहीं आ रहा ये भी अल्लाह की रहमत है, वरना जैसे पिछली कौमें मौजज़े मांग कर बर्बाद हो गई तुम भी बर्बाद हो चुके होते। और अज़ीज़ किस पे, कि एक एक बंदे को पकड़ कर अजाब का शिकार कर दे। यहाँ पे आप देखिए अम्बा और रसूल का सिलसिला पूरा होता है। अब इसके बाद एक तवील रुकू है जिसमें अल्लाह के नबी से खिताब है और इस पे हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात कि इस कौम पर अजाब कैसे आया था, किस तरह से ये सारे काम हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों के ऊपर अजाब की बात आती है। कुफार मक्का को ये बातें सारी सुनाई जा रही हैं। रिवायत के मुताबिक 7 दिन यानी 7 डेज इन पर सख्त गर्मी और धूप मुसल्लत कर दी। इसके बाद बादलों का एक साया आया। इमेजिन करें 7 दिन की गर्मी, लू चल रही है और दूर से बादल दिखे, और ये सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए साए तले जमा हो गए और कुछ सुख का सांस लिया। काला बादल आया, इन्होंने कहा ये काला बादल खूब बरसने वाला होता है। ये जुमला भी आगे आएगा कुरान में इनका, बुलाओ बुलाओ जल्दी करो सब नीचे आ जाओ। जू ही सारे उस बादल के नीचे आए, चंद लम्हे के बाद आसमान से आग के शोले बरसने शुरू हो गए और उस बादल में से आग बरसी, और साथ ही साथ ज़मीन जलजले से लरस उठी, और तीसरा ज़ाब्ता के एक सख्त चिंघाड़ ने इन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। तो 3 किस्म का अज़ाब इन पर आया, तो वह दिन यौम नज़ीम क्यों नहीं होगा? इसीलिए यहाँ यौम ज़ुल्ला कहा गया, और ज़ुल्ला साया। तो आप देखिए कि जब कौमें नाफरमानियाँ करती हैं तो अल्लाह ताला उनको कैसे पकड़ता है। सूरत अलराफ़ आयत 88 में इस कौम पर जलजिले का जिक्र है। सूरत हूद 94 में सईखतन यानी चीख के अज़ाब की बात है, और यहाँ सूरत शुरा की सायत में आसमान से टुकड़े गिराने का। तो गोया के एक कौम पर तीन किस्म के अज़ाब आए। ऐसी बातें करके अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम में से कोई अल्लाह से बचा हुआ नहीं है, दूर नहीं हो सकते। तुम ये ना सोचो कि तुम अल्लाह ताला को कहीं ना कहीं दिखा के हाथ चले जाओगे और दिस एंड दैट। तो इस तरह से आप देखिए कि जब कौमें ढिटाई का शिकार हो तो ये होता है। आज हम मुसलमान होने के बावजूद ये सारी कौमें जिनके जो काम हमने देखे ये सारे आज क्या हैं, क्या हम सब के अंदर नहीं दिख रहे? वो तो एक कौम में एक सज़ा थी, एक काम था उनका, उसकी सज़ा मिली। तो जिस उम्मत में आज ये सारे काम शुरू हो गए हों फिर उनकी सज़ा कितनी सख्त होनी चाहिए। ये अल्लाह के नबी की दुआ है। आपने दुआ की थी कि अल्लाह मेरी पूरी उम्मत एक ही दफ़ा सारी ना मारी जाए। अल्लाह ने अपनी नबी की ये दुआ उम्मत के हक़ में कबूल की थी, वरना पता नहीं कब के हम नीस्तो नाबूद हो जाते। देखिए आखिरी नबी की उम्मत होना जहाँ शान की बात है ना, तो वहाँ उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी तो बहुत सारी हैं। अल्लाह ताला कैसे ये करके दिखाता है कि तुम अपनी फ़िक्र करो। आज हम बच्चे में तुम कहते हम कर ही कुछ नहीं रहे, किसी को सामने सजा मिल जाए ना तो हम कहते हैं छुप तुम भी ठीक हो जाओ, एक को ज़रा सा पूछा जाए तो बाकी भी सब अलर्ट हो जाते हैं कि जी हमें ना पूछें। अब चूँकि ज़ाहर हमें अल्लाह पकड़ता हुआ दिखता हुआ दिखता नहीं है, तो नतीजा क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये कभी होगा ही नहीं और ये होता ही नहीं है। यहाँ चूँकि अम्बिया के किस्से हुए तो मुख्तलिफ अम्बिया कराम में से कौम हूद आज जो थी उसका काम क्या था, बोलिए जल्दी से, क्योंकि आप भी तो कुछ बोला करें ना कि सिर्फ सुनने की आदत ही ना पड़ जाए। इमारतें बनाते थे, ठीक है। उनके बारे में इब्ने अबी हातिम की एक रिवायत है कि जब मुसलमानों ने गौता में महल्लात और बागात की तामीर आला पैमाने पर ज़रूरत से ज़ायद शुरू कर दी तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद में खड़े होकर फरमाया, ए दमिश्क के रहने वालों सुनो। लोग सब जमा हो गए तो आपने अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद फरमाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ख्याल नहीं करते कि तुमने वो जमा करना शुरू कर दिया जिसे तुम खा नहीं सकते, तुमने वो मकानात बनाने शुरू कर दिए जो तुम्हारे रहने सहने के काम नहीं आते, तुमने वो दूर दराज की आरजुएं करनी शुरू कर दी जो पूरी होनी मुहाल है। क्या तुम भूल गए तुमसे अगले लोगों ने भी जमा जत्था करके संभाल संभाल कर रखा था, बड़े ऊंचे ऊंचे पुख्ता और मजबूत महल्लात तामीर किए थे, बड़ी बड़ी आरजुएं बांधी थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो धोखे में रह गए, इनकी पूंजी बर्बाद हो गई, इनके मकानात और बस्तियां उजड़ गई। आदियों को देखो यानी कौमियात की तरफ, आदियों को देखो कि अदन से उमान तक इनके घोड़े और ऊँट थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं? है कोई ऐसा बेवकूफ़ के कौमें आद की मीरास को दो दिरहमों के बदले में भी ख़रीद सके? ये हालात है। आज हमारा क्या हाल है? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, और जिस दुनिया के ना होने पे हम रोते हैं, वल्लाही अगर हमें अल्लाह का मिजाज समझ आ जाए तो हम खुश हों। जिस नेमत के ना होने पे ज़िंदगी अजीरन है ना, उसके ना होने पे अब खुशियाँ मनाएं। आप खुद सोचिए ना, माल बहुत होगा छोड़ के जाएंगे तो दुख होगा, बच्चे होंगे छोड़ के जाएंगे तो बेचारे यतीम हो जाएंगे, कौन पालेगा उनको, जिंदा रहे तो हमारे लिए बड़े आजमाइशें बड़े फितने हैं, घर नहीं है किराए पे रहते थे मर गए तो खाली कर देंगे लोग, और अगर अपना घर छोड़ा तो पीछे से कितने मसले खड़े हो जाएंगे। एक एक नेमत का नाम लिखे जो है और जो नहीं है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, फिर आप देखेंगे खुशी की ज़िंदगी वही बसर करते हैं कि जो अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी हैं। हम बात सब छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर रोगी बने रहते हैं, हमारी जितनी बीमारियां उसके अंदर रोग हमारे अपने हाथों के कड़े में पता नहीं चलता, तो फिर और परेशान होते हैं। तो फितरत के साथ जीने वाले, अल्लाह के हुक्मों को मानने वाले, और जो दुनिया की नेमतें उसको आगे के लिए चप्पू बनाने वाले जिसमें आखिरत की कश्ती जो है वो चल सके, यही कामयाबियों के नुस्खे।